नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर बहस चल रही है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से ये बताया गया कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की ज़रूरत क्यों है। उन्होंने लोकसभा सदस्यों के विभिन्न आपत्तियों पर जवाब देते हुए प्रस्ताव किया कि इसे संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। इससे पहले लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक संस्था की आज़ादी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और ना ही संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वक्फ एक्ट 1995 अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यह संशोधन लाया जा रहा है ताकि वो हासिल किया जा सके जो आप नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मसले पर राजनीतिक करने की कोशिश कर रहा है और मुस्लिमों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कई सांसदों ने उन्हें बताया कि वक्फ बोर्ड माफियाओं के कब्जे में है, लेकिन अब बिल का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कानून संविधान के ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन 1995 के वक्फ कानून में ऐसे प्रावधान हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर बोलते हुए अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कई मामलों के बारे में भी बताया। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुचारापल्ली के एक गांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यहां 1500 साल पुराना मंदिर है। वहां के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जब अपनी ज़मीन बेचने के लिए गया तो उसे बताया गया उसके गाँव की ज़मीन वक्फ की संपत्ति है। कर्नाटक में 2012 में माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकड़ ज़मीन को कमर्शियल उद्देश्य में बदल दिया गया, जबकि वक्फी ज़मीन का उपयोग सिर्फ धार्मिक और चैरिटेबल मकसद के लिए किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि सूरत नगर निगम के पूरे हेडक्वार्टर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बीएसपी चीफ मायावती ने केंद्र व यूपी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि केंद्र व यूपी सरकार द्वारा मस्जिद, मदरसा, वक्फ आदि मामलों में ज़बरदस्ती की दखलंदाजी तथा मंदिर व मठ जैसे धार्मिक मामलों में अति दिलचस्पी लेना संविधान व उनकी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत, अर्थात ऐसी संकीर्ण व स्वार्थ की राजनीति क्या ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार को राष्ट्रधर्म निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म, सांप्रदायिक उन्माद आदि की आड़ में कांग्रेस व बीजेपी आदि ने बहुत राजनीति कर ली और उनका चुनावी लाभ भी काफ़ी उठा लिया, लेकिन अब देश में खत्म हो रहा आरक्षण व गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि पर ध्यान केंद्रित करके सच्ची देशभक्ति साबित करने का समय है। मायावती ने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा, आज संसद में पेश वक्फ विधेयक पर जिस प्रकार से इसको लेकर संदेह, आशंकाएं व आपत्तियां सामने आई हैं, इसके मद्देनज़र इस बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की स्थायी समिति को भेजना उचित है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार अगर जल्दबाजी ना करे तो बेहतर। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसकी तीव्रता 7.1 बताई जा रही है। झटके इतने तेज रहे कि सुनामी का हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब जापान में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, जैसी वहां की भौगोलिक स्थिति है हर साल इसी तरह से धरती हिलती भी है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। समय के साथ जापान ने ऐसा विकास ज़रूर किया जो उसे अब भूकंप के बड़े नुकसानों से बचाता है। इस भूकंप की बात करें तो झटके जापान के क्यूशू और शिकोकू द्वीपों पर महसूस किए गए हैं। इसके अलावा कई तटीय इलाकों में भी भूकंप का असर देखने को मिला है। बड़ी बात यह है कि क्यूशू के मियाज़ाकी में तो समुद्र का रौद्र रूप दिखा है। 20 सेंटीमीटर ऊंची लहरों ने खौफ पैदा किया है। अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। धरती के ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जब भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं और एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। फ्रिक्शन के कारण धरती डोलने लगती है, कई बार धरती फट भी जाती है। वहीं कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इसे आफ्टर शॉक भी कहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे को अगले महीने तक अंतिम रूप देगा। बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और इंडिया गठबंधन के कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य और राज्यसभा सदस्य संजय राउत भी थे। जानकारी के मुताबिक उद्धव ठाकरे कल कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। मुंबई में बुधवार को महाविकास आघाड़ी की बैठक के बाद महाराष्ट्र एलओपी और कांग्रेस नेता विजय वेडेटीवार ने कहा कि सभी तीन दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा की। वडेटीवार ने कहा कि एमवीए ने 16 अगस्त को षणमुखानंद हॉल में एक बड़ी रैली या बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।